أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الله سبحانه وتعالى کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے الحمد للہ کہ اس نے ہمیں اس زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک بار پھر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور فکر کرنے کی کوشش کریں، اور کوئی سی کوشش اس جانب کریں، یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کس طرف بلاتا ہے، اور ہمیں کس طرف یہ دعوت دے رہا ہے. بے شک یہ قرآن جو ہے، میں نے آیات تلاوت کی ہیں سورہ رحمان میں سے. فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ رحمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے بہترین صفت کا ذکر ہے یہاں پہ الرحمان. علم القرآن، جو بہترین چیز ہے وہ قرآن ہمارے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا. خلق الانسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے بہترین تخلیق ایک جو ہے وہ انسان. اور علمہ البیان، ہمیں بیان کرنے کا سلیقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم تھوڑی دیر اپنی زندگیوں میں سے کوشش کر کے جب یہ نکال رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا مانگتا ہے، کس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے. تو آئیے میں اور آپ اس رمضان کی بابرکت ساعت کو شروع کرتے ہیں اور دورہ قرآن کی طرف چلتے ہیں. یہ دورہ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ منسلک کرے گا اور قرآن کے تقاضے جو ہے وہ ہمارے اوپر عیاں کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں ویسے ہی تخلیق کر کے نہیں چھوڑ دیا. گاہے بگاہے مختلف انبیاء اور رسل آتے رہے، اور آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آخری کتاب کا نزول فرمایا جو تا قیامت ہمارے سامنے رہے گی موجود اور ہماری رہنمائی کرتی رہے گی. اس رمضان کی ساعات کے اندر، یہ کل بھی بات ہوئی تھی ابتدائیہ میں بھی، کہ بہترین رات، ہزار مہینوں سے بہتر رات اس کے اندر موجود ہے، اور بہت فضیلت والا یہ مہینہ ہے اور بہت فضیلت والی یہ ساعات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو بہترین جو فرشتے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے جو ہے نازل کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین رحمت للعالمین کے اوپر نازل کیا تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے. جب اس قرآن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ہم موٹے موٹے سے دو جو ہیں مفسرین نے ان کے ادوار جو ہیں بتائیں. پہلا دور جو ہے وہ مکی دور کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہے مدنی دور، یعنی ہجرت مدینہ کی طرف جو ہجرت کی اس سے پہلے کا جو دور ہے وہ قریب قریب 12 سال کا جو دور ہے، 12 سال 5 مہینے اور اس سے کچھ اوپر دن، یہ ہجرت کا دور تھا جو مکی دور کہلاتا ہے. اس دور کے اندر جو سورتیں نازل ہوئیں، جو آیات نازل ہوئیں، ان کو آئمہ اکرام نے مکی سورتوں کا نام دیا. اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے مدینہ کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تحت، تو قریب لگ بھگ 9 سال اور کچھ مہینے اوپر مدینہ کی جو صورتیں ہیں ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. اب ہم اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہیں گے تو ہم تھوڑی سی اس کے اندر ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید اس ترتیب سے چل رہا ہے کہ جیسے جیسے وہ صورتیں نازل ہوتی گئیں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اور منشا کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو اس جگہ پر ترتیب دیا، مرتب کیا کہ جہاں اس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید میں موجود ہے. اب اگر مکی دور کو، جو کہ تقریباً میں نے کہا کہ 12 سال کا دور ہے، اس دور کو دیکھیں گے تو اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ساری پریشانیاں اور مصائب اور مشکلات کا سامنا تھا. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मक्की दौर को उसको भी जो मुफस्सरीन ने चार बड़े अदवार के अंदर जो है वो ढाला है। पहला दौर जो है वो 3 साल का है जिसमें तकरीबन 13 सूरतें जो है वो नाजिल हुई। ये आगाज नबूवत से 3 नबवी तक था। दूसरा दौर जो है उसमें 2 सूरतें 2 साल का है, उसमें 42 सूरतें आई और ये तकरीबन 4 और 5 नबवी का जो दौर है उसको कहलाता कहा जाता है। तीसरा दौर जो है ये 5 साल पर मुहित है और ये इसमें तकरीबन 22 सूरतें जो नाजिल हुई और ये 6 नबवी से लेके 10 नबवी तक का दौर है। और चौथा दौर जो उसमें 3 साल का ये दौर है जिसमें 13 सूरतें नाजिल हुई और ये 11 हिजरी से 11 11 नबवी से हिजरत तक का ये दौर है। पहला दौर जो था वो आप का एक गैर ऐलानिया दावत का दौर कहलाता है। उसके बाद दूसरे दौर में आप ने ऐलान ऐलान अलग ऐलान जो है नबूवत का इजहार किया और लोगों को अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ बुलाया। तीसरे दौर में मक्का के मुशरिकीन ने जुल्म की इंतहा कर दी और उसी दौर के अंदर वो कहत का वाक्य भी आया और 3 साल का वो पुरफतन दौर शब अबी तालिब वाला भी आया और आम हजम भी आया कि जिसमें उम्मुल मोमिनीन हदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा और हजरत अबू तालिब का जो है इंतकाल हुआ। फिर ताइफ का वाक्य भी इसी तीसरे दौर के अंदर आता है और चौथे दौर के अंदर जो है वो हिजरत और मेराज और बैतानी और बैतूला उनका दौर आता है। इस छोटी सी तनकीद के बाद मैं इस तरफ आऊंगा कि असल में कुरान का नज़ूल जो है वो ता क़यामत है हमारे सामने। ये नहीं है कि ये कुरान उस दौर के लिए नाजिल हुआ और उसके बाद इस किताब को बंद करके रख दिया जाए। ये दो दो गलासों के अंदर दो जिल्दों के अंदर मुजल्लद करके इसको बहुत ऊंची मकाम पे कहीं रख दिया जाए कि घर के ऐसे मकाम पे कि जहाँ पे हाथ तक ना पहुंचे कि हम इसकी इसका एहतराम कर रहे हैं इसका एहतराम कर रहे हैं इसका एहतराम इसका एहतराम ये है कि हम इसे पढ़ें सबसे पहले की और जब पढ़ें तो इससे इससे इसके इसके माने को समझें इसके माने को समझेंगे हमारे हलक से नीचे उतरेगा तो ये कुरान हमारे लिए किताब का बायस बनेगा। ये हमारे दिलों को टटोलेगा ये हमारे दिलों को झंझोड़ेगा और उसके बाद इस कुरान को हम आम करें दूसरे लोगों तक पहुंचाए वो रोशनी जो मुझे पहुंच गई औरों तक पहुंचाए। ऐसे ना हो कि कांटों पे सजाया जाता हूँ या धो धो के पिलाया जाता हूँ सिर्फ इसके लिए कुरान का नज़ूल नहीं हुआ। ये कुरान चलता फिरता कुरान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि क्या आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नहीं देखी जो कि चलता फिरता कुरान मुजस्सम कुरान यानी यही कुरान अदालतों में यही खुदा कुरान जो है मदरसों में यही कुरान घरों में यही कुरान बाजारों में यही कुरान हुक्मरानों के दिलों में और हमारे चलते फिरते नजरिए के साथ ये कुरान वाबस्ता हो। सबसे पहली सूरत जो यहाँ पे हमारे सामने है वह सूरत फातिहा। सूरत फातिहा तरतीब के हिसाब से यानी तरतीब या कुरान के हिसाब से तो पहली सूरत है मगर नज़ूल के हिसाब से ये पांचवी सूरत है। ये अच्छी सूरत है और ये पहली मुकम्मल सूरत है जो कि मक्का में नाजिल हुई। इसको मुख्तलिफ और नाम दिए गए इसके नाम में उमुल किताब भी है इसके नाम इसका नाम जो है फातिहुल किताब भी है इसका नाम जो है वो सब आमसानी भी है और इसके और मुख्तलिफ नाम आते हैं। ये असल में ये किताब इसकी फजीलत में अगर मैं थोड़ा सा जिक्र कर दूँ तो तिर्मिज़ी में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है फरमाया इस बात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है इस जैसी कोई सूरत ना तौरात में नाजिल की गई ना इंजील में ना ज़बूर में और कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसमें 7 आयात फरमान आसानी और कुरान अजीम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। इसी तरह इसे उम्मुल कुरान भी कहा गया और सूरत फातिहा के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है सही मुस्लिम में फरमाते हैं कि सूरत फातिहा पर मुश्तमिल दुआ करने के बाद आदमी जो मांगे उसे मिलता है کیونکہ حاضر لعب دی لعظل عب دی مسئلہ. اس قرآن کے بارے میں, اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہمیں یاد آتی ہے. تو وہ مسلم میں فرماتے ہیں, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان نصف نصف ہو گئی ہے, آدھا آدھا ان کو جو ہے ہم نے بانٹ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب فرماتا ہے رب بندے نے میری حمد بیان کی. جب انسان فرماتا, انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری ثنا بیان کی. جب انسان کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندے نے میری بندگی میری بزرگی بیان کی. جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, میرے بندے کے لیے وہ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے. اور آگے انسان سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ اے میرے بندے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا سے فرماتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے لیے, اور میرے لیے وہ ہے جس کا کہ وہ سوال کرے. یعنی جو بندہ اس ہم شریف پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قبول فرماتا ہے. آپ دیکھیں کہ الحمدللہ رب العالمین شروع کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم سے, رب العالمین. اور اسی طریقے سے قرآن کے اختتام ان دو صورتوں پر, سورہ فلق اور سورہ الناس, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق, اس رب کی قسم, قل اعوذ برب الفلق, اس رب کی قسم, قل اعوذ برب الناس, اس رب کی کے لیے جو ساری انسانیت کا رب. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت سے اعتراض شروع ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ربوبیت سے قرآن مجید کا اختتام پذیر ہوتا ہے. یہ جو سورت ہے سورہ فاتحہ, دراصل یہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دعا کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے اگر مانگنا ہو تو پہلے کس طریقے سے مانگو, اس دعا اس کی ترتیب کیا ہو. اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بتایا کہ پہلے انسان جو ہے وہ رب سے کس طرح مانگے. یعنی کہ جو شروع کی آیات ہیں وہ آداب دعا سکھاتی ہیں. جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ آداب دعا میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی انسان بیان کرتا ہے. اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم استغفار کے دعا استعمال کرتے ہیں. یعنی ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں, کہ ہم اس کے بندے ہیں, ہم اس سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے, ہم کہاں جائیں گے. اور تیسرا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے مغز, یہ دعا کا اصل ہے, یہ اس دعا سے چوٹی ہے کہ انسان ہدایت کی صراط المستقیم کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر وضاحت دعا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کے جیسا نہ بنا دے کہ جن کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ مغضوب, جو کہ کافروں کا, منکرین مشرکین کا راستہ ہو, ان کی طرف جو لعنت ہے ان کی طرف نہ چل دیں. اس دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے پوری انسانیت کے لیے, پورے انسانوں کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے یہ پوری کتاب سامنے اس کے جواب میں رکھی. یہ ہے وہ کتاب علیہ السلام نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری, اور اس میں کوئی شک نہیں, اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں. ہدن للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت کا. یہ جو سورہ بقرہ ہے ترتیب کے حساب سے کوئی دوسری سورت ہے, مگر نزول کے حساب سے 87 نمبر آتا ہے, 87 نمبر آتا ہے. یہ مدنی دور کے ابتدائی دور کی سورت ہے اور اس میں 286 آیات ہیں. یہ بہت طویل سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس میں قرآن کی, اس کو قرآن کی چوٹی بھی کہا گیا ہے. اور اس میں مختلف مضامین جو آئے ہیں, تقریباً 103 احکامات آئے ہیں اس سورت کے اندر, اور وہ بنتے ہیں کیوں, کیونکہ یہ بالکل ابتدائی جو مسلمانوں کی کیفیت تھی उस तमाम को कवर कर रही। मुफस्सरीन ने इस सूरह बकरा के दो हिस्से किए, मजमूई तौर पर और बहसियत सूरह बकरा इसके दो जो है मौजूदात के हिसाब से दो हिस्से किए। पहला हिस्सा जो है आयत नंबर 1 से 152 तक जाता है और इसके 18 रुकून है तकरीबन, और दूसरा हिस्सा जो है वो आयत नंबर 153 से लेके 286 तक, यानी 19 रुकू से 40 रुकू तक दी जाती है। पहला जो ये इसका हिस्सा है ये साबका उम्मतों को बिलूम खिताब किया गया है और वहां पे मुख्तलिफ वाकयात हैं और वो जो 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 वाकयात और जो उनके साथ मामलात पेश आए उनका जिक्र है, उससे मैं जाता हूँ थोड़ी देर में। और दूसरा जो है वो हिस्सा वो उम्मत मुस्लिमा से जो अल्लाह ताला खिताब के रिल्पसी पहले इसके हिस्से के अंदर पहली जो तकरीबन 39-40 आयात हैं ये तमजीदी मजामीन है उसके अंदर, कि जिसमें इस्लाम के हवाले से जो जो तीन किरदार जो इंसानों के तीन किरदार हो सकते हैं वो अल्लाह सुब्हान व तआला ने गिनाए हैं और उनकी उनकी बात की है। जिस किरदार में पहला किरदार जो है सबसे पक्का जो मुसलमान होता है मोमिन होता है अल्लाह सुब्हान व तआला की जो भी तालीमात है जो भी उसके अहकाम है उसको मानने वाला होता है, उस पर अमल करने वाला, उसको तहे दिल से तस्लीम करने वाला होता है, यानी कि मुसलमान होता है। दूसरा जो गिरोह है या दूसरा जो जो किरदार है वो है पक्के काफिर, जो बिल्कुल किसी तौर में हिदायत के करीब नहीं पटकते और वो कहीं पर भी उनका दिल पसीसता नहीं। और तीसरे जो है वो मुनाफिकीन है, जाहिरी तौर पर वो मुसलमानों के साथ मगर दिल से वो काफिरों के साथ, वो दो रुखों किरदार, वो दो मुंहों किरदार वो लोग होते हैं। और कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने ऐसे किरदार को भी बहुत जो है खोल के उनके किरदार जो है हमारे सामने पेश किए हैं। ये नहीं है कि कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो है सीधा सीधा चंद चीजों का जिक्र करके छोड़ दिया हो, अल्लाह सुब्हान व तआला इन तीनों किरदारों के जो जो खुसूसियात या जो उनके खासा होते हैं, जो उनके मामलात होते हैं, जो उनकी हरकत होती हैं, उनका जिक्र किया और फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनके अंजाम का भी जिक्र किया और अल्लाह सुब्हान व तआला ने बताया कि इन लोगों का क्या अंजाम होगा और ये किस तरफ इनकी कश्ती जाके लगेगी। आयत नंबर 21 से आयत नंबर 29 तक अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान हकीम की जो है दावत उसका पूरा जिक्र किया और फिर आयत नंबर 30 से आयत नंबर 39 तक कुरान हकीम का जो फलसफा है यानी इंसान का मनसब खिलाफत उसका जिक्र बताया। ये जब हम इस सूरह बकरा की तरफ हम जब जाते हैं तो जिस तरह मैंने कहा कि ये मदीने की शुरू दौर की सूरतों में से है, इन की जो सूरत है, तो मक्का में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकीम थे तो वहाँ पे मुख्तलिफ चैलेंजेस थे, वहाँ पे एक ऐसे वहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ्फारे मक्का के साथ कुफ्फारे यहूद के साथ और उन तमाम लोगों के साथ जो कि बिल्कुल यानी मुसलमानों के सामने जिद और हदगर्मी और दीन बेजारी के तरह के लोग थे उनका सामना था, जबकि दूसरी तरफ जब मदीने की रियासत एक छोटी सी रियासत कायम हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ ले आए हैं, बिल्कुल शुरू का दौर है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनाफिकीन का जो है वो भी साबका और लायका हुआ और किसी भी तरीके से वो मुसलमानों की जो इस छोटी सी रियासत को खत्म करने के दरपेय थे और हर तरीके से इसको नुकसान पहुंचाने के दरपेय थे, हमें ये नजर आता है इन तमाम सूरतों के अंदर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो पहली ग्रुप पहला कैटेगरी की यानी मोमिनीन और मुस्लिमीन उनको जन्नत की बशारत दी और दूसरा और तीसरा जो ग्रुप था या ग्रोह है उसको जहन्नम की जो है वही सुनाई और खास तौर पर मुनाफिकीन को तो जहन्नम के भी सबसे आखिरी निचले दर्जे में जो है उसकी वही सुनाई गई। इसी सूरत के अंदर कुरान मजीद फरकान हमीद की हक्कानियत को चैलेंज करने वालों को जुटलाने वालों को अल्लाह सुब्हान तआला ने चैलेंज किया और फरमाया कि अगर कोई एक एक सूरत ही बना के लिया व्यक्ति, अगर तुम बना सकते हो, और फरमाया कि नहीं, तुम कभी नहीं बना सकते। और तंबीह भी की कि ऐसे लोगों के लिए आग के अलाव तैयार किए गए हैं जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। इसी सूरत के अंदर किस्सा आदम इबलीस जो है वो भी इसका भी जिक्र बयान आया और फरमाया कि ये जो किस तरीके से जो है फरिश्ते जो हैं वो बिल्कुल अल्लाह सुब्हान तआला के तमाम हुक्म को मानने वाले, उसके उसके कोई हुक्म अदली न करने वाले, और दूसरी तरफ इंसान जो अगर उससे अगर कोई गलती सरद हो जाए तो अल्लाह सुब्हान तआला के सामने सर तस्लीम खम करता है, वो अल्लाह सुब्हान तआला से माफी का तलबगार और खासदार होता है और अपनी गलती की तरफ रुजू करता है। जबकि तीसरी कैटेगरी जो है वो इबलीस की कैटेगरी है जो अपनी गलती के बाद उससे अड़ जाता है, अटल हो जाता है कि हाँ अगर मैंने सजदा नहीं किया होगा तो इंसान को अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म के ताबे नहीं हुआ तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं इस इंसान को बहकाऊंगा। इसके बाद जो है इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र भी हमें किस्सा जो है वो भी मिलता है कि अबुल अंबिया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शख्सियत पर रोशनी डाली और उनकी कुर्बानी का जिक्र किया गया और बताया गया कि किस तरीके से खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर कर और यहाँ के रहने वालों के लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने किस तरीके से अहम अमन और जो इस बिलाद के शहर को अमन का गहवारा बना देने की बात की। फिर इसी तरह इस सूरत में तहवील सिदरा का जिक्र जो है आयत नंबर 140 के अंदर के जो 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 एक बहुत अहम वाकया था हिजरत के तकरीबन 17 माह के बाद बैतुल मक़द्दस की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वहाँ से मुसहर के खाना काबा की तरफ जो है वो फेर दिया गया अल्लाह सुब्हान तआला के हुक्म के तहत। फिर इस सूरत में तब्दीली इमामत असल में ये इस सूरत का अमूद है, ये इस सूरह ज़खरा की बहुत ही जो पहचान है वो ये है कि तहवील क़िबला यानी जो 2500 साल से यहूद और नसारा के पास जो क़यादत थी वहाँ से पलट के मुसलमानों की तरफ की क़यादत तब्दील हो रही थी। ये इस सूरत के अंदर तमाम उन चीज़ों को उन गैर मुस्लिमों के या यहूद नसारा के जो जराइम हैं उनको एक तरह से चार्जशीट जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने उनके सामने पेश की और इसमें आयत नंबर 188 में मनासिक हज जो है वो अल्लाह सुब्हान तआला ने सिखाए कि इन सफा वल मरवा का मिन शाइरिल्लाह कि सफा मरवा यानी वो जो सही है वो जो बीबी हाजरा की जो सही है सफा और मरवा के दरमियान और किस तरीके से वहाँ पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो एड़ियाँ रगड़ते हैं और किस तरीके से वहाँ पे जमजम का चश्मा जो है पीता है। और फिर इसके बाद रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से तख्लीक की, रात दिन की तख्लीक की, दिन रात का फर्क, समुंदरों को चीर कर, समुंदरों का सीना चीर कर चलने वाले जहाज़ों का जिक्र फरमाया और इस तरीके से अगर इंसान को ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह सुब्हान तआला की तख्लीक हैं, ये फ़ज़ा, ये समंदर, ये पहाड़, ये चीज़ें अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ हमें बसीरत की आँख से नहीं लेके जाते, हम सिर्फ बसारत की आँख से इसको देखते हैं तो इंसान को अपने ऊपर गौर करना चाहिए और क्या अल्लाह सुब्हान तआला की तमाम निशानियों को इंसान जो है वो किस तरीके से झुठला सकता है और कैसे अल्लाह सुब्हान तआला की इन तमाम निशानियों से रूगर्दानी कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला की इन तमाम नेमतों को जब हम अपनी जिंदगियों में बरत रहे हों, जब हम अपनी जिंदगियों में इन चीज़ों को इन 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 चीज़ों से हम मुस्तफीद हो रहे हों तो ज़रूर हमें अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रगुजार होना चाहिए, एक बंदे की हैसियत से उसके सामने सजदा रेज होना चाहिए और इस एहसास के साथ कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए कि हमारे लिए मुझसे रहा है और ता क़यामत इसके अंदर कोई जो है तब्दीली नहीं हो सकती बशर्ते कि हम इसको पढ़ें, हम इसको समझें, हम इस पर अमल करने वाले बने और हकीकी तौर पर अल्लाह सुब्हान तआला के सामने अपने आप को पेश करें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान तआला इस रमज़ान की तमाम बरकात को हमें समेटने की तौफीक अता फरमाए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह सुब्हान तआला इस कुरान को हमारे लिए नूर हिदायत बना दे। इस दुआ के साथ ये कुरान हमारे लिए कब्र में भी हमारे लिए रोशनी का बायस हो, और ये कुरान हमें आखिरत में भी चले सलात में हमारे साथ साथ हो। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि हमें इस कुरान को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए, अमल करने वाला बनाए, इसको दुनिया के अंदर नाफिज करने वाला बनाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।